एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान वन।
और मैं हूं आपकी साथी मेजबान टू। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो शायद हम में से कई लोगों की जिंदगी से सीधे जुड़ती है, ब्रायना वीस्ट की द माउंटेन इज यू।
बिल्कुल, ये किताब एक बहुत ही आम लेकिन उलझी हुई पहेली को देखती है ना, कि हम सब चाहते तो हैं कि आगे बढ़ें, कुछ अच्छा करें,
हाँ,
लेकिन फिर भी जाने अनजाने खुद ही अपने रास्ते में रोड़े अटका लेते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है?
हाँ, ये अनुभव तो शायद सबको कभी ना कभी होता ही है। हम गोल्स बनाते हैं, प्लान करते हैं, पर फिर प्रोक्रेस्टिनेशन या शक या बस वही पुरानी आदतें
सही कहा,
वापस आ जाती हैं। और आज के टाइम में तो जहाँ सक्सेस का इतना प्रेशर है, ये समझना और भी ज़रूरी हो जाता है कि ये जो अंदर की रुकावटें हैं, ये आखिर है क्या भला। तो किताब यही कहती है, भाई वो पहाड़ कहीं बाहर नहीं ढूंढो, वो तुम्हारे अंदर ही है।
तो चलिए आज इसी अंदर के पहाड़ को थोड़ा कुरेदते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले, ये ब्रायना वीस्ट हैं कौन, इनके बारे में कुछ बताइए।
हाँ, ये जानना इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो कोई मतलब टिपिकल साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट नहीं है। ब्रायना वीस्ट असल में एक राइटर है, कवियत्री भी है, और वो फेमस हुई अपने ऑनलाइन लेखों से।
अच्छा, ऑनलाइन लेखों से।
हाँ, जैसे थॉट कैटलॉग जैसे प्लेटफॉर्म्स है ना, वहां उनके लेख वायरल हुए।
तो उनका नजरिया थोड़ा अलग होगा फिर, मतलब अकादमिक नहीं बल्कि ज्यादा प्रैक्टिकल।
बिल्कुल, यही उनकी खासियत है। वो साइकोलॉजी, फिलॉसफी, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी, इन सबको मिलाकर बहुत ही आसान भाषा में रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर बात करती है। उनकी राइटिंग में एक एक पोएटिक टच है, जिससे गहरी बातें भी सीधी दिल तक पहुंच जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई समझदार दोस्त आपको आराम से कुछ समझा रहा हो।
तो ये किताब द माउंटेन इज यू और ये जो सेल्फ सैबोटाज का मुद्दा है, इसके लिए उनका ये नजरिया तो काफी फिट बैठता है, क्योंकि ये है ही बहुत पर्सनल चीज।
हाँ बिल्कुल, और वो दो चीजों पर बहुत जोर देती हैं। एक तो है पूरी जिम्मेदारी लेना, जिसे वो कहती हैं रेडिकल सेल्फ अकाउंटेबिलिटी।
अच्छा।
और दूसरी है खुद के लिए गहरी करुणा, माने सेल्फ कंपैशन। अक्सर क्या होता है, हम या तो खुद को कोसते रहते हैं,
हाँ, या दूसरों को ब्लेम करते हैं।
एग्जैक्टली। वीज कहती हैं, भाई इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाओ, जिम्मेदारी लो लेकिन नरमी से, प्यार से।
ये अच्छा बैलेंस है। तो अब आते हैं किताब पर, इसका मतलब कोर आइडिया क्या है, किस बारे में है ये?
देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये किताब सेल्फ सैबोटाज, यानी खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने की जो हमारी आदत होती है,
हाँ, कह सकते हैं,
उसको समझने और उससे उबरने की एक गाइड जैसी है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो महसूस करते हैं कि यार मैं फंस गया हूँ, बार बार वही गलती कर रहा हूँ।
चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो
या अपनी आदतें।
हाँ, किसी भी एरिया में जहां लगता है कि एक अदृश्य दीवार है जो आगे नहीं बढ़ने दे रही। और किताब का मेन तर्क यही है कि वो दीवार या पहाड़, वो बाहर के हालात या दूसरे लोग नहीं है, वो हमारे अंदर का डर है, हमारी लिमिटिंग सोच है, हमारी वो आदतें हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं।
अच्छा, तो ये पहाड़ एक सिंबल है
हमारे अंदरूनी संघर्षों का।
बिल्कुल।
तो किताब सिर्फ प्रॉब्लम बताकर छोड़ देती है या समाधान भी है?
नहीं नहीं समाधान भी है, ये पूरी एक जर्नी पर ले जाती है। पहला स्टेप तो है पहचानना, एक्सेप्ट करना कि हाँ प्रॉब्लम मेरे अंदर है।
ओके।
फिर वो जड़ों तक जाती है कि हम ऐसा करते क्यों हैं, क्या पुराने घाव हैं, बचपन की कौन सी जरूरतें पूरी नहीं हुई, कौन से गहरे बिलीफ्स हैं हमारे, जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूं टाइप के, जो हमें रोक रहे हैं। और फिर वो प्रैक्टिकल तरीके बताती है कि कैसे हम एक नया हेल्दी मेंटल और इमोशनल बेस बना सकते हैं।
मतलब सिर्फ बुरी आदतें छोड़ना काफी नहीं है, हमें अपने सोचने और महसूस करने का तरीका ही बदलना होगा।
हाँ बिल्कुल, जैसे अपनी अंदरूनी वायरिंग को ठीक करना, इसमें अपनी भावनाओं को समझना, अपने ट्रिगर्स पहचानना।
ट्रिगर्स यानी वो चीजें जो हमें गुस्सा दिलाती हैं या दुखी करती हैं।
हाँ, जो एकदम से तीव्र रिएक्शन पैदा करती हैं, उन्हें पहचानना, अपने बचपन के घावों पर काम करना, इनर चाइल्ड वर्क जिसे कहते हैं, और फिर सोच समझकर एक बेहतर भविष्य डिजाइन करना।
बाप रे, ये तो काफी गहरा काम लग रहा है। चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं, किताब की ये यात्रा, इसके मुख्य पड़ाव क्या हैं?
हाँ देखिए, चैप्टर्स तो ऐसे पारंपरिक नहीं है, पर एक लॉजिकल फ्लो है। पहला पड़ाव तो यही है, द माउंटेन इज यू, मतलब ये मानना कि पहाड़ आप ही हैं। वीस्टियां कहती हैं कि जिसे हम सेल्फ सैबोटेज कहते हैं ना,
हाँ,
वो असल में हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक, क्या कहते हैं, एक गलत कोशिश है हमें किसी आने वाले दर्द या डर से बचाने की।
ये तो उल्टी बात हो गई, हम खुद को बचाने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। कोई उदाहरण देंगे?
हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए किसी को प्रमोशन चाहिए, ये उसकी कॉन्शियस इच्छा है,
ठीक है,
पर अंदर ही अंदर सबकॉन्शियस लेवल पर उसे डर है कि वो नई जिम्मेदारियां संभाल नहीं पाएगा, फेल हो जाएगा। तो उसका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उसे उस खतरे से बचाने के लिए उसे टालमटोल करवाएगा,
अच्छा,
या शायद वो इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ कर देगा। तो यहां कॉन्शियस इच्छा प्रमोशन और सबकॉन्शियस डर फेलियर में टकराव है।
समझ गया, ये तो बहुत होता है। अच्छा, तो ये समझने के बाद अगला स्टेप क्या है?
अगला पड़ाव है जड़ों को समझना और अपने ट्रिगर्स पहचानना। वीस्ट कहती हैं कि हमारे ट्रिगर्स, मतलब वो बातें यहां लात जो हम में अचानक बहुत तेज इमोशनल रिएक्शन पैदा करते हैं।
जैसे किसी छोटी सी बात पर भड़क जाना।
हाँ, या एकदम से बहुत उदास हो जाना। वो कहती हैं कि ये जो ओवर रिएक्शन है ना, ये असल में हमारे पुराने अनसुलझे घावों और अधूरी जरूरतों की तरफ इशारा करते हैं। ये एक मैप की तरह है।
मैप? किस चीज का मैप?
हमारे अंदरूनी घावों का मैप। ये ट्रिगर्स हमें बताते हैं कि हमारे अंदर कौन सी गहरी मान्यताएं, कोर बिलीव्स एक्टिव हैं, जैसे मुझे कोई प्यार नहीं करता, या मैं हमेशा अकेला रह जाऊंगा, या मैं किसी लायक नहीं हूं।
ओह,
तो वीस्ट कहती हैं कि इन ट्रिगर्स से भागो मत, उन्हें जानकारी का सोर्स समझो, वो तुम्हें रास्ता दिखा रहे हैं कि मरम्मत कहाँ करनी है।
ओह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल गया। ट्रिगर्स दुश्मन नहीं, गाइड है। अच्छा, इसके बाद?
इसके बाद आता है भावनात्मक समझ का विकास, यानी डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। वीस्ट मानती हैं कि इसके बिना सेल्फ सैबोटेज से निकलना नामुमकिन है, और यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है।
तो फिर क्या है?
मतलब है उन्हें सुनना, समझना कि वो क्या मैसेज दे रहे हैं, और फिर होश में रहकर चुनना कि रिएक्ट कैसे करना है।
क्या नेगेटिव इमोशंस भी किसी काम के हो सकते हैं? गुस्सा, डर, उदासी।
हाँ, यही तो पॉइंट है। वीस्ट कहती हैं हर इमोशन का एक पर्पस है। चिंता हमें फ्यूचर के लिए तैयार कर सकती है, गुस्सा हमें बता सकता है कि हमारी बाउंड्री क्रॉस हुई है, उदासी हमें किसी लॉस को प्रोसेस करने में मदद करती है। हमें एक हेल्दी इमोशनल बेसलाइन बनानी है, जहां हम फील तो करें पर भावनाओं में बह ना जाए।
ये तो जिंदगी भर सीखने वाली बात है। अच्छा, आगे क्या है इस यात्रा में?
आगे आता है एक बहुत ही गहरा हिस्सा, अतीत को छोड़ना और अंदर के बच्चे को ठीक करना, हीलिंग द इनर चाइल्ड। वीस्ट कहती हैं कि हम सबके अंदर एक बच्चा हमेशा रहता है, जिसमें हमारे बचपन के सारे अनुभव, इमोशंस, बिलीफ स्टोर होते हैं।
अच्छा,
और हमारे आज के जो बहुत से डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स हैं ना, वो असल में उसी घायल बच्चे की अधूरी जरूरतों से चलते हैं।
कोई उदाहरण? जैसे
मान लीजिए किसी बच्चे को बचपन में बहुत आलोचना मिली, तो वो बड़ा होकर परफेक्शनिस्ट बन सकता है।
हाँ, हर चीज परफेक्ट करने की कोशिश,
हाँ, ताकि फिर से वो आलोचना ना मिले। या जिसे बचपन में निग्लेक्ट किया गया, अनदेखा किया गया, वो शायद हमेशा दूसरों को खुश करने में लगा रहे, वैलिडेशन ढूंढता रहे। तो वीस्ट कहती हैं कि हमें अपने उस अंदर के बच्चे को समझना होगा, उसे वो सेफ्टी, वो प्यार देना होगा जो शायद उसे तब नहीं मिला। इसे रीपेरेंटिंग कहते हैं, मतलब खुद के अच्छे पेरेंट बनना।
ये बहुत पावरफुल आइडिया है। तो क्या हम बस अतीत में उलझे रहते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से किताब का फोकस फ्यूचर पर शिफ्ट होता है। अगला पड़ाव है एक नया भविष्य बनाना और अपनी क्षमता को अपनाना। यहां जोर इस बात पर है कि सिर्फ पुराने पैटर्न रोकना काफी नहीं है, हमें एक्टिवली वो लाइफ बनानी होगी जो हम जीना चाहते हैं, एक ऑथेंटिक लाइफ।
वो कैसे होगा?
वेस्ट फ्यूचर सेल्फ के कॉन्सेप्ट पे जोर देती हैं। मतलब आप सोचिए, आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं, उसकी एक क्लियर पिक्चर बनाए, और फिर रोज छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे कदम उस दिशा में उठाएं।
बड़ी छलांग नहीं, छोटी आदतें।
छोटी आदतें,
हाँ।
माइक्रो हैबिट्स,
हाँ।
लगातार कंसिस्टेंसी, यही असली टिकाऊ बदलाव लाती हैं।
और अंत में सब कुछ कैसे जुड़ता है?
अंत में आता है आत्मविनाश से आत्मनिपुणता तक,
फ्रॉम सेल्फ साबोटाज टू सेल्फ मास्टरी।
यहाँ वीस्ट सारी बातों को समेटती हैं और वो कहती हैं कि सेल्फ मास्टरी का मतलब परफेक्शन नहीं है या अपनी सारी कमजोरियां मिटा देना नहीं है।
तो क्या है?
इसका मतलब है इंटीग्रेशन, मतलब अपने सारे हिस्सों को, अच्छे बुरे डार्क लाइट सबको स्वीकार करना, उनके साथ जीना सीखना, उन्हें दुश्मन नहीं बल्कि अपने हिस्से समझना और उन्हें मैनेज करना सीखना। फाइनल मैसेज उम्मीद का है कि गोल सिर्फ खुद को बर्बाद करने से रोकना नहीं है बल्कि एक ऐसी मीनिंगफुल लाइफ बनाना है जिससे भागने की जरूरत ही महसूस न हो।
वाह, ये तो सच में एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है। अगर इस पूरी किताब से कुछ कह लीजिए 3-4 मुख्य संदेश निकालने हो तो वो क्या होंगे?
मेरे लिए पहला और सबसे जरूरी है, सेल्फ सैबोटाज कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये एक भटका हुआ प्रोटेक्टर है। यह हमें दर्द से बचाने की एक अजीब सी कोशिश है। ये समझने से गिल्ट कम होता है और क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि अच्छा, ये मुझे किस चीज से बचाने की कोशिश कर रहा है।
हाँ, ये बहुत बड़ी राहत है। दूसरा,
नेगेटिव इमोशंस असल में इम्पॉर्टेंट मैसेंजर्स हैं। गुस्सा, डर, उदासी ये दुश्मन नहीं, गाइड हो सकते हैं अगर हम उन्हें सुनना सीखें। ये हमें बताते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ है या हमें किस चीज पर ध्यान देना है। हमारे यहाँ तो अक्सर सिखाया जाता है इमोशंस दबाओ।
हाँ, खासकर मर्दों को।
बिल्कुल, पर ये किताब कहती है नहीं, उन्हें समझो।
तीसरा
है, पूरी जिम्मेदारी लेना ही असली आजादी है। जब तक हम दूसरों को या हालात को ब्लेम करेंगे, हम विक्टिम बने रहेंगे। जिस मोमेंट हम कहते हैं नहीं, पहाड़ मेरे अंदर है, मेरी सोच, मेरी फीलिंग्स, मेरे रिएक्शंस, मेरी जिम्मेदारियां हैं, उसी पल पावर हमारे हाथ में आती है।
बिल्कुल,
मुश्किल है पर रास्ता यही है।
बिल्कुल। चौथा,
फ्यूचर को ठीक करने के लिए पास्ट पर काम करना जरूरी है। हमारे बचपन के घाव अनजाने में आज भी हमें चलाते हैं, तो इनर चाइल्ड पर काम करना सिर्फ पुरानी बातें कुरेदना नहीं है, वो आज और कल को बेहतर बनाने का इन्वेस्टमेंट है।
और कोई पांचवा?
हाँ, एक और, असली बदलाव धीरे धीरे लगातार छोटे कदमों से आता है। इंस्टेंट रिजल्ट की चाह छोड़नी होगी, वो रोज की छोटी आदतें, माइक्रो हैबिट्स, वही बड़ा फर्क लाती हैं। और छठा भी जोड़ दूं?
हाँ, बिल्कुल।
लक्ष्य परफेक्शन नहीं, इंटीग्रेशन है। अपनी शैडो साइड, अपनी कमजोरियों को भी अपनाना, उनके साथ जीना सीखना, यही सच्ची मास्टरी है।
ये सारे ही पॉइंट्स बहुत सोचने पे मजबूर करते हैं। किताब में जरूर कुछ ऐसी लाइनें होंगी जो एकदम हिट करती हैं।
हाँ, बहुत सारी हैं, जैसे वो मेन आइडिया ही, आप पहाड़ों में नहीं है, पहाड़ आपके अंदर है। बस ये एक लाइन ही सब कह देती है। असली लड़ाई अंदर है।
और वो सेल्फ सैबोटेज की डेफिनेशन भी बड़ी अच्छी थी।
हाँ, वो वाली, आत्मविनाश असल में इच्छाओं का बंटवारा है। जब आपका सचेत मन कुछ चाहता है और अवचेतन मन कुछ और, ये उसे एक अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट की तरह दिखाता है, ना कि हमारी स्टूपिडिटी की तरह।
सही है, खुद को समझना आसान हो जाता है।
बिल्कुल।
ट्रिगर्स के बारे में भी एक पावरफुल लाइन थी शायद।
हाँ, आपके ट्रिगर आपके अनसुलझे घावों का नक्शा है, वे आपकी स्वतंत्रता के अग्रदूत हैं। मतलब जो चीजें सबसे ज्यादा दर्द देती हैं, वही आजादी का रास्ता दिखा सकती हैं, बस उन्हें समझने की जरूरत है।
क्या बात है। और वो जो असली लक्ष्य वाली बात थी,
सच्चा उपचार स्वयं को ठीक करना नहीं बल्कि एक ऐसा जीवन बनाना है जिससे आपको भागने की आवश्यकता ना हो। मतलब फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग से ज्यादा एक मीनिंगफुल लाइफ बनाने पर होना चाहिए,
ताकि पुराने पैटर्न की जरूरत ही ना पड़े।
एग्जैक्टली।
बदलाव पे भी एक लाइन थी।
हाँ,
एक्शन वाली।
हाँ, आप सोचकर नए तरीके से काम नहीं कर सकते, आपको काम करके नए तरीके से सोचना होगा। मतलब एक्शन पहले लो, बिलीफ बाद में बदलेगा। इंतजार मत करो कि मोटिवेशन आएगा, बस कर डालो, छोटा सा ही सही, वो एक्शन ही सोच बदलेगा।
ये सारे विचार सुनने में तो बहुत इंस्पायरिंग है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, कुछ प्रैक्टिकल तरीके?
हाँ, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए रिश्तों में, अगर कोई नोटिस करता है कि वो बार बार इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर ही चुनता है,
हाँ,
तो वो रुक कर सोच सकता है क्यों? कहीं ये गहरे जुड़ाव के डर से बचने का तरीका तो नहीं? फिर उस डर पर काम करके ज्यादा हेल्दी चॉइस कर सकता है।
और करियर में, जैसे ये टालम टोल प्रोकास्टिनेशन?
हाँ, प्रोकास्टिनेशन अक्सर फेलियर के डर से आता है, या कभी कभी सक्सेस के डर से भी, कि सफल हो गया तो और एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी।
अच्छा।
हाँ, तो उस डर को पहचानना पहला कदम है। फिर वो फ्यूचर सेल्फ वाली टेक्निक यूज कर सकते हैं, सोचें कि वो इंसान जो आप बनना चाहते हैं वो अभी क्या करता, और फिर बस वही एक छोटा कदम उठा लें। इम्पोस्टर सिंड्रोम से डील करने में भी ये हेल्प करता है।
हेल्थ और हैबिट्स के बारे में, जैसे स्ट्रेस ईटिंग।
हाँ, जब स्ट्रेस हो या उदासी लगे तो सीधा फ्रिज की तरफ भागने के बजाय एक मिनट रुकें, पूछें, मैं अभी क्या फील कर रही हूँ, मुझे असल में क्या चाहिए, शायद आराम चाहिए या किसी से बात करनी है। वो ट्रिगर जर्नलिंग भी बहुत हेल्पफुल है, क्या हुआ, कैसा लगा और इसके पीछे क्या सोच या जरूरत हो सकती है। ये अवेयरनेस ही पहला स्टेप है।
तो मतलब बेसिक बात है कि अपने अंदर क्या चल रहा है उसके प्रति ज्यादा अवेयर होना, है ना?
बिल्कुल, अपने थॉट्स, फीलिंग्स, पैटर्न्स को देखना बिना जजमेंट के, और फिर छोटे छोटे कॉन्शियस चॉइस बनाना। ये हर जगह लागू होता है, पैसा, हेल्थ, क्रिएटिविटी, सब जगह।
तो अंत में इस पूरे बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ी टेक अवे या सबसे सरप्राइजिंग बात क्या रही?
मेरे लिए तो सबसे एम्पावरिंग सीख यही है कि बदलाव की चाबी सच में हमारे अपने हाथ में है। हम सिचुएशन के विक्टिम नहीं हैं, हम अपने एक्सपीरियंस के क्रिएटर बन सकते हैं। और ये जानना कि सेल्फ साबोटाज हमारी आइडेंटिटी नहीं है, बस एक सीखा हुआ पैटर्न है जिसे बदला जा सकता है, ये बहुत होप देता है।
और आपके लिए?
मेरे लिए सबसे, क्या कहूँ, राहत देने वाला नज़रिया ये था कि सेल्फ सैबोटाज असल में हमें प्रोटेक्ट करने की एक कोशिश है। इससे शर्म हट जाती है और उसकी जगह करुणा और जिज्ञासा आ जाती हैं। और ये आइडिया कि गोल परफेक्ट बनना नहीं बल्कि अपने सारे हिस्सों को अच्छे और बुरे अपनाकर एक होल इंटीग्रेटेड लाइफ जीना है, ये रोज़ की शांत कॉन्शियस कोशिशों की जर्नी है। शायद शायद वो पहाड़ जिसे हम पार करना चाहते हैं वही हमें वो इंसान बनाता है जो हम बनने के लिए बने हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।